नमस्कार भारत, आज है 11 मई दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। दो दिन के दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा?
प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं एक बुद्धिस्ट फंक्शन के लिए। उसका मैसेज है कि हम नेबर्स हैं और हमारे बहुत सारे ताल्लुक हैं, और कल्चरल भी और रिलीजियस भी।
सुप्रीम कोर्ट में आज से 3 तलाक के मसले पर 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। दुनिया जहान में आज चर्चा आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला पर, जहां बुनियादी जरूरत की चीजों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं लोग।
मादुरो भी एक्सट्रीम पर जा रहे हैं, अपोजिशन गैर जिम्मेदार है, अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट भी गैर जिम्मेदाराना कदम उठाते जा रहे हैं।
होंगे खेल की खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका में सबसे बड़े बौद्ध पर्व वेसाक दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कोलंबो में इस मौके पर एक बड़े बौद्ध सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। इस यात्रा में मोदी की श्रीलंकाई नेताओं से कोई आधिकारिक बातचीत तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीलंका के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ भारत की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 मई को सुनवाई करेगा। भारतीय मीडिया की खबरों के मुताबिक भारत की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की फांसी तब तक रोकने को कहा है जब तक न्यायालय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को साफ किया कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से किसी भी सवाल का जवाब उचित स्तर पर जरूर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक के पद से जेम्स कोमी को हटाने के फैसले का बचाव किया है। जेम्स कोमी को पद से हटाकर डोनाल्ड ट्रंप ने सबको हैरान कर दिया था। जेम्स कोमी ट्रंप के चुनाव प्रचार और रूस के संबंधों पर एफबीआई की जांच की अगुवाई कर रहे थे। डेमोक्रेट नेताओं का मानना है कि इस बर्खास्तगी का संबंध ट्रंप के चुनाव प्रचार और रूस के कथित संबंधों में एफबीआई जांच से हो सकता है, लेकिन व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सचिव सारा हुकाबी सैंडर्स ने ये सफाई दी। राष्ट्रपति चाहते हैं कि वो जो देखते और समझते हैं उसे जारी रखें, और ऐसे ही उन्होंने हाउस और सीनेट कमेटियों की जांच को भी जारी रखने को कहा है। सीधी बात यह है कि सोमवार को जो जांच हो रही थी वो अभी भी चल रही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो जाँच करें, और साल भर से जो बातें सामने आ रही हैं कि ट्रंप के चुनाव प्रचार रूस का कोई संबंध नहीं है वो साबित हो जाए। ये थे सारा हुकाबी सैंडर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 2 और लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक महीने से हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या 40 के करीब पहुंच चुकी है। काराकास में कई युवा प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर बोतलें और मल से भरी थैलियां फेंकी, जबकि सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ी। वहीं सरकार के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और इनमें लोग पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेस की तस्वीर हाथ में लिए हुए नाचते दिख रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल एक महिला मार्लेन बेराटोरेन ने ये कहा। उन्होंने हमसे इतना कुछ ले लिया कि अब डर भी उन्होंने हमसे ले लिया है। हम अब सड़कों पर आने से नहीं डर रहे हैं। मैं 62 साल की हूं और सड़कों पर हूं। मेरी उम्र भी मुझे नहीं रोक पा रही है। अब हम नहीं डरते। उन्होंने हमारे बहुत सारे बच्चों को मार दिया है। इस तमन के खिलाफ मौत और बमों का सामना करने के लिए सड़कों पर उतरने की मैं अपील करती हूँ। सड़कें शांत ना रहें। ये थे मार्लेन बोराटोरेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के 5 मामलों में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च अदालत को सबूत सौंपे हैं। अदालत के जज सेर्जियो मोरो ने उनसे 5 घंटों तक पूछताछ की है। लुला ने सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में भ्रष्टाचार के एवज में एक फ्लैट मिलने के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन के दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। ये उनकी दूसरी श्रीलंका यात्रा होगी। भारत और श्रीलंका वैसे तो अच्छे पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन तमिलों और मछुआरों की समस्या को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद भी रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा यानी वेसक दिवस के मौके पर श्रीलंका जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में क्या क्या बातें शामिल हैं, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर से बात की।
जो प्रधानमंत्री का श्रीलंका का दौरा है, अभी तरह से कार्यक्रम बना हुआ है, एक सिंबॉलिक विजिट है। वैशाख के दिन के लिए वो जा रहे हैं और वहाँ पर जो सेलिब्रेशन है, सेरेमनी है, उनके लिए जो बुद्ध पूर्णिमा का जो आयोजन होता है उसमें भाग लेने वो जा रहे हैं। इसके अलावा वो मंदिर पे शायद जाएंगे, क्योंकि जिस इलाके में वो ट्रेवल कर रहे हैं इस बार सेंट्रल श्रीलंका में, वहाँ पर तमिल पॉपुलेशन से मिलने जा रहे हैं। और एक हॉस्पिटल है वहाँ दिलकोया में, कैंडी में, जहाँ पर वो उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये विजिट ऑफिशियल्स ने स्पष्ट किया है, इस पे कोई बायलैटरल बातचीत नहीं होगी, ना कि कोई अग्रीमेंट साइन होने हैं। ये गुडविल विजिट है, आप मान लीजिए सारे साउथ एशिया से बुद्धिस्ट लीडर्स भी वहाँ पर होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि श्रीलंका के भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं बुद्धिस्ट फंक्शंस में भाग लेने के लिए। तो उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर जा रहे हैं।
सुहासिनी हैदर, ये बताइए कि जिसे भारत के सरकारी अधिकारी सद्भावना यात्रा बता रहे हैं, जैसा आपने कहा अभी, क्या प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा को कूटनीति के हिसाब से भी देखा जाना चाहिए, कूटनीतिक मायने तलाशने चाहिए इस यात्रा के?
आई थिंक जब ये विजिट की पहले घोषणा हुई थी और जब इसके लिए तैयारियां हो रही थी, तब लगा था कि शायद इस विजिट के दौरान जो महत्वपूर्ण अग्रीमेंट है भारत और श्रीलंका के बीच में, उन पे कुछ अमल हो सकता था। एक तो उनके बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसको इटका बुलाते हैं, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट, और उसके अलावा वहाँ ट्रिनकोमाली में जहाँ पे भारत काफी सारे प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रहा है, उस पे लग रहा था कि कुछ ठोस निकलेगा। लेकिन इसके इस विजिट के दो या तीन हफ्ते पहले ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे दिल्ली आए थे। यहाँ पर वर्किंग विजिट में उन्होंने एक MOU साइन किया था, और उसी वक्त श्रीलंका के गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि कोई ऐसा अग्रीमेंट श्रीलंका में नहीं अनाउंस होगा या साइन होगा जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। इसके अलावा ये जरूर है कि ये जो विजिट है, दो तीन दिन बाद उसके चाइना में बेल्ट एंड रोड फोरम समिट होने वाला है, तो जाहिर है कुछ लिंकेज तो ढूंढेंगे कि इंडिया दिखाना चाहता है कि उसके नेबरहुड में उसके अपने बायलैटरल रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इतना जाहिर है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट के अंदर अभी भी काफी अनबन है भारत के साथ जो अग्रीमेंट्स वो साइन करने जा रहे हैं। अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं है कि ये अग्रीमेंट्स वो साइन करना चाहते हैं।
एक आखिरी सवाल कि आज की तारीख में भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे हैं?
अभी अगर देखें कि फिशरमैन का इशू सबसे ज्यादा उलझा हुआ था, लेकिन अभी लगता है कि दोनों तरफ ने डिसाइड कर दिया है कि फिशरमैन इशू पे वो बातचीत करते रहेंगे जब तक ये रिजॉल्व ना हो जाए कि भारतीय फिशरमैन को कैसे दूसरे उपाय दिए जाएं ताकि वो श्रीलंकन वाटर्स में ना जाए। के अलावा ये जो अग्रीमेंट है वो साइन करना चाहते हैं। आई थिंक इन्वेस्टमेंट और ट्रेड भी बढ़ाना चाहते हैं दोनों। भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं, कभी कभार लगता है कि उनके बीच में जो टेंशन है वो और चीजों को जैसे छुपा देती है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं एक बुद्धिस्ट फंक्शन के लिए, वो उसका मैसेज है कि हम नेबर्स हैं और हमारे बहुत सारे ताल्लुक हैं, और कल्चरल भी और रिलीजियस भी और स्पिरिचुअल भी हम शेयर करते हैं।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर, जो बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा वैसे तो रस्मी है, लेकिन क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों से मिलकर बनी संवैधानिक बेंच आज से मुस्लिम समुदाय से जुड़े 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह के मामले में सुनवाई शुरू करेगी। ऐसा कमी होता है जब गर्मी की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के जज किसी मामले की सुनवाई करते हों। 3 तलाक को लेकर लंबे अरसे से विवाद चला आ रहा है, और हाल के दिनों में मोबाइल पर मैसेज भेज और फोन पर तलाक दिए जाने की घटनाओं ने पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को एक चिंताजनक स्थिति में ला खड़ा किया है। आइए हमारे सहयोगी इकबाल अहमद और इंदु पांडे से जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई।
इकबाल जी, ये बताइए कि इस मामले की शुरुआत कैसे हुई?
देखिए, बहुत दिलचस्प बात है कि मामला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है वो एक ہندو مہیلا سے ہے۔ دراصل اکتوبر 2015 میں کرناٹک کی ایک مہیلا پھولوتی سپریم کورٹ پہنچی۔ انہوں نے عدالت سے گہار لگائی کہ ہندو سکسیشن ایکٹ کے تحت پیترک سمپتی میں ان کا حصہ جو ہے وہ ان کے بھائیوں کے برابر ہونا چاہیے۔ اس کیس کو پرکاش اینڈ ادرس ورسز پھولوتی اینڈ ادرس کہا جاتا ہے۔ اس کیس کی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے ہندو سکسیشن ایکٹ کو لے کر کچھ باتیں کہیں۔ سنوائی کے دوران پرکاش کے وکیل نے کہا کہ ہندو قانون میں کمیوں کی بات تو عدالت کہہ رہی ہے، لیکن مسلم پرسنل لاء میں تو بہت سارے ایسے پراودھان ہیں جو سیدھے سیدھے مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہیں۔ یہ سنتے ہی سپریم کورٹ کے جج جسٹس انیل دوے اور جسٹس اے کے گوئل نے سوتہ سنگیان لیتے ہوئے یعنی سوموتو ایک پی آئی ایل دائر کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو نوٹس جاری کر دیا اور اسے اپنا پکش رکھنے کو کہا۔
تو پھر اقبال جی، یہ بتائیے کہ شائرہ بانو کی انٹری کیسے ہوئی؟
دراصل پھولوتی والے معاملے کے دوران ہی اتراکھنڈ کی ایک مہیلا ہے شائرہ بانو، ان کو ان کے پتی نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا، اور فروری 2016 میں شائرہ بانو نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالت سے گہار لگائی کہ 3 طلاق کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ شائرہ بانو کے بعد آفرین رحمان اور نیلوفر سمیت 4 اور مسلم مہیلائیں ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں گہار لگائی اور یہ کہا کہ 3 طلاق کو عدالت جو ہے اس پر پابندی لگا دے۔
تو پھر مسلم دھارمک سنگٹھن ان کے ساتھ کیسے جڑے؟
مسلمانوں کی ایک دھارمک اور ساماجک سنستھا ہے جمعیت العلماء ہند، وہ بھی عدالت پہنچی اور اس نے سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ مسلمانوں کے پرسنل معاملے سے جڑے کسی بھی معاملے میں عدالت اگر کوئی بھی فیصلہ سناتی ہے تو اس سے پہلے جمعیت العلماء ہند کی رائے بھی ضرور سنی جائے، اور جمعیت کے علاوہ مسلمانوں کے پرسنل لاء کی حفاظت کرنے کا دعویٰ کرنے والی ایک سنگٹھن ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس نے بھی سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کر دی اور یہ کہا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی بھی رائے ضرور لی جائے۔ تو اس طرح سے جو مسلم دھارمک سنگٹھن ہیں وہ بھی اس معاملے سے جڑ گئے، ان میں بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن اور بے باک کلیکٹیو شامل ہیں۔ 30 مارچ 2017 کو سپریم کورٹ نے جب سب کا حلف نامہ قبول کر لیا تو اس دن یہ سنایا کہ 11 مئی سے سپریم کورٹ کی سمویدھانک بینچ یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ اس معاملے کی روزانہ سنوائی کرے گی۔
تو پھر شائرہ بانو اور مہیلا سنگٹھنوں کی مانگ کیا ہے؟
شائرہ بانو اور جو مہیلا سنگٹھن ہیں ان کی مکھ مانگ یہ ہے کہ 3 طلاق یعنی ایک طرفہ ایک وقت میں 3 طلاق دے کر شادی ختم کرنے کا جو پراودھان ہے اس کو اور حلالہ کو اور مسلمان مردوں کو جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت جو مسلم پرسنل لاء کے تحت انہیں حاصل ہے اس کو قانونی طور پر پابندی لگا دی جائے۔ یہ مکھ مانگ ہے شائرہ بانو اور مہیلا سنگٹھنوں کا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ بھارتیہ سمویدھان کی جو دھارہ 14 اور 15 ہے یعنی رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے، برابری کا جو قانون ہے اس کے ادھیکار کا یہ الگھن کرتی ہیں۔
تو پھر مسلم دھارمک سنگٹھنوں کا پکش کیا ہے اس میں؟
مسلم دھارمک سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ سمویدھان کی دھارہ 25 کے تحت مسلمانوں کو اپنے دھرم کو اپنے حساب سے جینے اور پالن کرنے کا جو ادھیکار ہے اس معاملے میں عدالت کو کوئی دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ معاملے ان کے پرسنل لاء سے جڑے ہیں اور عدالت کو پرسنل لاء میں دخل دینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے مسلم دھارمک سنگٹھنوں کی۔
3 طلاق اور حلالہ سے جڑی تمام جانکاریاں دے رہے تھے اقبال احمد اور اندو پانڈے۔
نمسکار بھارت، شارٹ ویو 49, 41, 31 اور 25 میٹر بینڈ یعنی 6155, 7995, 9915 اور 11995 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر۔
بھارت پرشاست جموں کشمیر میں سینا کے ایک افسر کی کتھت طور پر ہتیا کر دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ عمر فیاض ویسے تو اخنور میں تعینات تھے لیکن چھٹی منانے اپنے گھر کلگام گئے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ عمر اپنے ایک رشتے دار کی شادی میں شامل ہونے کے لیے شوپیاں گئے ہوئے تھے، وہیں انہیں کتھت طور پر اغوا کر گولی مار دی گئی۔ ہمارے سہیوگی سندیپ سونی نے دیونگت لیفٹیننٹ فیاض کے ایک رشتے دار ڈاکٹر رفیق سے بات کی۔
جی، یہ تو بہت صدمے کی بات ہے کیونکہ لڑکا بہت چھوٹا تھا، جسٹ 20 ایئرز کا لڑکا تھا۔ تو وہاں پہ میری سرمنی میں گیا تھا تو وہاں پہ یہ حادثہ ہوا۔
ڈاکٹر رفیق، آپ لیفٹیننٹ عمر فیاض نے جب آرمی جوائن نہیں کی تھی اس کے پہلے کے بارے میں کچھ بتائیے، کس طرح وہ یہاں تک پہنچے تھے؟
ایکچولی وہ ہمارے لوکل اسکول میں پہلے ایڈمیشن ہوا تھا اس کا، دیٹ از اے چیریٹی اسکول، تو وہاں پہ اس نے ففتھ کلاس تک وہاں پہ پڑھنے میں بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد میں اس نے وہاں پہ ایک ودیالیہ ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں چل رہی ہے، وہاں پہ اس کا ایڈمیشن ہوا ہے، وہاں پہ 12ویں جماعت تک وہاں پہ وہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں اس کا ایڈمیشن این ڈی اے میں، نیشنل ڈیفینس اکیڈمی میں ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کی ٹریننگ پیریڈ چل رہی تھی 5 سال تک۔
اور ان کے گھر پریوار کے بارے میں بتائیے، لیفٹیننٹ عمر فیاض کے گھر پریوار میں کون کون ہیں؟
گھر میں اس کے 2 بہنیں ہیں اور ان کے ساتھ انکل رہ رہے ہیں، انکل کے 2 بیٹے ہیں، یہ جوائنٹ فیملی میں پریزنٹلی رہ رہے ہیں۔ ابھی تو فی الحال ہم اس صدمے سے نہیں باہر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ ایک آفت سی ٹوٹ پڑی ہے، کیونکہ گھر میں کوئی، اس کا صرف یہی ایک لڑکا تھا، وہ تو وہی جانے، مطلب جس کا یہ بیٹا ہے جس کی ماں کا گود اجڑ گئی ہے، زیادہ تو وہی جانتے ہیں، ہم تو دکھ کر سکتے ہیں 2 دن 4 دن 5 دن۔
یہ تھے دیونگت لیفٹیننٹ فیاض کے رشتے دار ڈاکٹر رفیق۔ اور اب دلی سے نکلنے والے اخباروں کی سمیکشا کا وقت ہے، ہریتا کانٹپال ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ جی ہریتا، کیا کیا خبریں ہیں آج خاص؟
جی سب سے پہلے ہم انہیں کی بات کرتے ہیں جن کے بارے میں ابھی سندیپ سونی جی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر رفیق سے۔ کشمیری یوا جو سینا سے جڑے ہوئے تھے، ان کو جو کل اغوا کر کے ان کی ہتیا کر دی گئی، جو خبر سامنے آئی آج سارے اخباروں کے پہلے پنے پر پہلی ہیڈ لائن وہی ہے۔ اور اس پر انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ سینا نے کہا ہے کہ یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ، مطلب کہ ایک کافی اہم پل ہے، اور اس کے بعد کافی تیز کر دی جائے گی کارروائی۔ اور دینک بھاسکر اس پہ لکھتا ہے کہ سینا نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو آتنک کے خلاف کھڑا کرنے والا ایتہاسک لمحہ بنے گی یہ گھٹنا، مطلب اسے بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ دینک بھاسکر نے یہ بھی لکھا ہے کہ 26 سال میں پہلی بار آتنکیوں نے فوجی افسر کو اغوا کر کے مارا ہے۔ دوسری جو خبریں چھائی ہے وہ ہے آج 3 طلاق کا مدعا سپریم کورٹ میں آنے والا ہے۔ ٹائمس آف انڈیا نے لکھا ہے کہ 5 دھرموں کے، الگ الگ دھرموں کے 5 جج 3 طلاق پر سنوائی کرنے والی سپریم کورٹ کی بینچ میں شامل ہیں۔ ان میں سکھ جو ہیں وہ ہیں چیف جسٹس جے ایس کھیر ہیں، جسٹس کورین جوسف عیسائی ہیں، آر ایف نریمن پارسی ہیں، یو یو للت ہندو ہیں، اور عبد النظیر مسلم ہیں۔ تو یہ 5 جج اس پر سنوائی آج سے شروع کرنے والے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی کی پرمکھ مایاوتی خبروں میں ہے۔ انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ انہوں نے پارٹی کی نمبر 2 کی حیثیت سے رہنے والے نیتا نسیم الدین صدیقی اور ان کے بیٹے کو جو ہے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ پارٹی ویرودھی گتیویدھیوں میں شامل ہونے کا آروپ لگایا گیا ان پر اور پھر انہیں نکالا گیا ہے۔ جبکہ جن ستا نے لکھا ہے کہ نسیم الدین صدیقی نے کہا کہ وہ گروار کو مایاوتی کا کچا چٹھا کھولیں گے، کل تک تو انہوں نے کوئی پرتکریا نہیں دی تھی، اور آج دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا پرتیاروپ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی بھی خبروں میں ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے پہلے پنے پر یہ خبر چھپی ہے کہ عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ اگر وہ الیکشن کمیشن چناؤ آیوگ کے ای وی ایم کو ہیک کرنے میں ناکام رہتی ہے تو وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ سوربھ بھاردواج نے حال ہی میں جو ہے ای وی ایم ہیک کر کے دکھایا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا بھی ای وی ایم اگر سامنے آیا تو وہ ہیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور نہیں ہوا تو معافی مانگیں گے۔
جی بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کے لیے ہریتا کانٹپال۔ اور اب وقت ہے دنیا جہان کا۔ قریب 2 دشک پہلے ہیوگو شاویز نے جس وینیزویلا کو کرانتی کے ذریعے تیل کمپنیوں کے مکڑ جال سے باہر نکالا تھا، وہ اب بدحالی اور مشکلوں میں ایسا گھر گیا ہے کہ اس کے سامنے بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ شاویز کے اتراधिकारी نیکولس مڈورو کی نیتیوں سے یہ لیٹن امریکی دیش آرتھک مشکلوں کے ساتھ ساتھ راجنیتک سنکٹ کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ تیل سنسادھن میں سمپن اس دیش میں روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے عام لوگوں کو بھاری مشکلوں کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ دنیا جہان میں نکھل رنجن نے یہی جاننے کی کوشش کی ہے۔
دنیا جہان،
دنیا کے راشٹر پرمکھوں کی جماعت میں ایسے کم ہی نیتا ملیں گے جو اپنے انگرکشکوں، ویٹروں اور دوسرے سہائکوں کو سارجنک روپ سے باہوں میں بھر لیتے ہوں۔ وینیزویلا کے پورو راشٹرپتی ہیوگو چاویز اپنی انہی اداؤں سے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے۔ حالانکہ غریبوں کے پرتی ان کی ہمدردی کا صرف ایک یہی روپ نہیں تھا، वेनेजुएला में भारत के राजदूत रहे दीपक भोजवानी।
जब से वो चावेज प्रेसिडेंट बने थे तब से लेकर उन्होंने राजनीतिक नक्शा बदल दिया था। काफी कंपनी नेशनलाइज हुए, टैक्सेस बढ़ाए गए और बहुत ही आमदनी आई मुल्क को। अब बात यह है कि उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट की वो ऐसी पॉलिसीज थी जैसे कि गरीबों को बहुत कुछ मिला। हेल्थ के तौर पे क्लिनिक्स उन्होंने बनाए सरकारी पैसे के साथ, घर बनाए, बहुत कुछ किया काम उन्होंने गरीबों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं। ये सारे तेल के पैसे जो जा रहे थे खर्चे में और बाहर के लोग जैसे डॉक्टर्स टेक्नीशियन सारे आ रहे थे और काम कर रहे थे सारे बाहर के इंडस्ट्री से, तो अपनी इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप नहीं की खास और बस इसी रास्ते पे चलते गए। ये समझते कि भाई तेल की तो आमदनी आ रही है और इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
सामाजिक क्षेत्र में इस दरियादिली ने चावेज को तेल के धनी देश का मसीहा बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जब तक चढ़ती रहीं तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन गिरती कीमतों ने वेनेजुएला के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। महंगाई आसमान पर है, रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए लोग तरस रहे हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल का उत्पादन दिनों दिन कम होता जा रहा है।
अब जब तेल के दाम गिरे और ह्यूगो चावेज खुद गुजर गए 2013 में फरवरी के महीने में, तो उसके बाद उनके जो जगह है उन्होंने खुद सब मुल्क से कहा कि मिस्टर मडुरो जो हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे या मेरी जगह वो लीडर बनेंगे। तो मडुरो जी बन गए और जैसे आमदनी मुल्क की घटती गई तो उसी हिसाब से उनकी भी पॉपुलैरिटी घटती गई और आजकल लोगों का हाल ऐसा खराब हुआ है क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे। हिंदुस्तानी मेडिसिन जो बिक रहे हैं वहाँ पे उनको पैसे नहीं वसूल हो रहे हैं।
जानकार बताते हैं कि वेनेजुएला में सऊदी अरब से ज्यादा बड़ा तेल का भंडार मौजूद है। हालांकि यहां के तेल की किस्म थोड़ी अलग है और उसे इस्तेमाल के लायक बनाने की प्रक्रिया कुछ लंबी और खर्चीली है। यही वजह है कि दूसरे देशों की तुलना में यहां कच्चे तेल की कीमत और कम है। भारत समेत दुनिया भर की कंपनियां यहाँ तेल की खुदाई में शामिल हैं, लेकिन कोई और उद्योग यहाँ खड़ा नहीं हो सका। यहाँ के लोगों के पास न तो काम है और न ही आमदनी का दूसरा कोई जरिया। ऐसे में इस वक्त यहाँ बदहाली अपने चरम पर है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज के प्रोफेसर अब्दुल नाफे इसके लिए विदेशी कंपनियों और देश के मध्यम वर्ग को जिम्मेदार मानते हैं।
एक तो जैसे तेल के कीमतें गिरी तो सरकार को लगा कि उनका खर्चा तो बहुत ज्यादा था, जो जिम्मेदारियां थी खर्चे की सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी। दूसरा फैक्टर ये कि जो तेल की कंपनियां हैं और एंटी चावेज जो मध्य वर्ग है वेनेजुएला में, उन्होंने पूरा एक आर्थिक गृहयुद्ध छेड़ रखा है। आर्थिक व्यवस्था कभी भी चरमराती नहीं अगर ये लोग जरा पॉजिटिवली काम करते। मादुरो का कहना है कि अपोजिशन ने पूरा सेबोटाज कर रखा है जिसमें ऑयल एग्जीक्यूटिव शामिल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और वहां का जो मध्य वर्ग जो पिछले 60 साल से जिसने तेल के मुनाफे को लेकर के उस पर अपनी मोनोपोली जमा रखी थी, ये वो लोग जिम्मेदार हैं।
चावेज के दौर में तेल कंपनियों के प्रबंधन में भी भारी फेरबदल हुआ। विदेशी और पेशेवर लोगों को हटाकर चावेज ने स्थानीय और अपने भरोसेमंद लोगों को अहम पदों पर बिठाया। अब वहां तेल से जुड़े मामलों में पीडीवीएस से फैसला करती है, लेकिन फिलहाल वो खुद अपने कर्जे चुकाने में असमर्थ है।
उनकी जो सरकारी कंपनी है पीडीवीसा में बहुत सारे काबिल लोग थे, लेकिन उनको हटाया गया जब 2002 में ह्यूगो चावेज के खिलाफ एक बगावत हुआ और 3 दिन के लिए चावेज को हटाया गया और नया शासन मतलब पू जैसा बना था, तो नए शासन वाले वो आ गए थे और ऐसे वैसे कर रहे थे, तो ह्यूगो चावेज वापस आ गया क्योंकि फौज ने उसको वापस लाया। जब फौज वापस लाई उसे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो पीडीवीसा में पुराने शासन के चमचे लोग हैं बिठाए गए उनके तरफ से और बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं, तो कुछ 18,000 उनके टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन जो साइंटिस्ट जो हैं उनको हटा दिया गया। तो जो पीडीवीसा कर पा रहा था उस जमाने में वो भी नहीं कर पाया, सब फॉरेन कंपनीज पे उनको डिपेंड करना पड़ा। अब फॉरेन कंपनीज जब आएंगे तो नफा देख के आएंगे, लेकिन फिर चावेज ने शुरू कर दिया अपना वही पॉलिसी कि भाई सब हमारे हाथ में रहना चाहिए, तो खास तौर पे अमेरिकन कंपनीज को उन्होंने भगा दिया, एक्सप्रोप्रिएट कर लिया, नेशनलाइज कर दिया। अब जब आप फॉरेन कंपनीज को भगा दोगे, अगर आपके बस की बात नहीं है तेल निकालना और तेल बेचना और तेल रिफाइन करना, तो फिर हाल तो वही होगा जो वेनेजुएला का हुआ, जहां प्रोडक्शन 30 लाख बैरल दिन के अब 2.5 लाख बैरल भी नहीं निकल रहे हैं।
हालांकि हालांकि चावेज की नीतियों के कारण ही भारत और कई दूसरे देशों की कंपनियों को वेनेजुएला में आने का मौका भी मिला।
ये चावेज की ही हिम्मत थी कि जिसके कारण ONGC विदेश, रिलायंस इंडस्ट्री, SR इस तरह की जो भारतीय कंपनी है वो वेनेजुएला की मार्केट में दाखिल हो पाई। अमेरिकन और कनाडियन और ब्रिटिश कंपनी का इतना दबदबा था वहाँ।
संकट के इस दौर में वेनेजुएला के लोग देश की राजनीति को भी नकारात्मक भूमिका में देख रहे हैं। सत्ता की बागडोर अब चावेज के करीबी रहे मदुरो के हाथ में है और उनसे ना तो राजनीति संभल रही है ना तेल कारोबार। नेशनल असेंबली में विपक्षी दलों का बोलबाला है। ऐसे में मदुरो ने जब अपने लिए अधिकार बढ़ाने की कोशिश की तो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। चावेज ने मदुरो को अपना उत्तराधिकारी तो बनाया लेकिन उनमें वो करिश्मा नहीं भर सके जो मुश्किलों का हल निकालने में सक्षम हो।
मदुरो भी एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। अपोजिशन गैर जिम्मेदार है, अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट भी गैर जिम्मेदाराना कदम उठाते जा रहा है। अभी तो ये है कि मदुरो को हटाओ, मदुरो के तो मैं नहीं हटूंगा, चाहे उस चक्कर में देश भाड़ में जाए। ये मदुरो से गलती हुई है यहाँ पर।
मदुरो की नीतियों का विरोध देश के बाहर भी हो रहा है। लातिन अमरीकी देशों के साथ ही अमरीका भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के कमजोर पड़ने से चिंता में है और प्रतिबंधों के रास्ते तलाश रहा है। ऐसे बुरे हाल में कोई और मजबूत नेता भी नजर नहीं आता जो मुश्किलों के हल का कोई रास्ता निकाल सके। ह्यूगो चावेज ने आम जिंदगी से राष्ट्र प्रमुख तक का सफर क्रांति के रथ पर सवार होकर किया था, लेकिन मसला देश का हो तो वो सिर्फ अपने करीबियों पर भरोसा करते थे। इसी वजह ने कई लोगों को उनसे और वेनेजुएला से दूर भी किया। अब जब देश मुश्किलों में घिरा है और उनके करीबी मदुरो उसे संभाल नहीं पा रहे हैं तो सवाल उनकी नीतियों पर भी उठ रहे हैं। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
दुनिया जहान के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब थोड़ी चर्चा खेलों की। IPL के 50वें मैच में दिल्ली डेयर डेविल्स ने गुजरात लायंस को 2 विकेट से हरा दिया है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात लायंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 195 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में दिल्ली की टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और 8 विकेट खोकर 20वें ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। दिल्ली की जीत में सबसे अहम योगदान रहा श्रेयस अय्यर का, जिन्होंने 57 गेंदों में 94 रन की धुआंधार पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। और अब अन्य खेल खबरें सुनिए।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। वो महिला वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। झूलन ने सबसे ज्यादा विकेट लेने का ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही 4 देशों की सीरीज में बनाया है। झूलन गोस्वामी, जो कि फुटबॉल की फैन हैं और खेलती हैं क्रिकेट, इनके बारे में कभी इनकी सहयोगी रही और फॉर्मर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन अंजू जैन।
तब मैं कैप्टन थी इंडियन टीम की। अब द मोमेंट आपको पता चल ही जाता है कि वो इतना फोकस्ड थी तब से ही कि, और उसका जो एम था कि यस मुझे इंडिया खेलना है और इंडिया के लिए कुछ करना है, एंड वही आज उसने करके दिखाया है। क्योंकि अगर आज भी आप देखें, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15 साल के ऊपर हो गए उसे खेलते हुए इंडिया के लिए। डेडिकेशन और हार्डवर्क और वो सेम रूटीन्स जो है वो फॉलो करती है।
और टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे ने रोमानिया के मारियस कोपिन को लगातार सेटों में 6-4, 6-3 से हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में एंट्री कर ली है। और कल नई दिल्ली में शुरू हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने भारतीय दल की अगुवाई की।
खेल समाचार सुना रही थी इंदु पांडे। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ भारत की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 मई यानी सोमवार को सुनवाई करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच एजेंसी FBI के निदेशक के पद से जेम्स कोमी को हटाने के फैसले का बचाव किया। वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।